इतने सुंदर कांड, उसका फूल है, सुगंधि से भरा है, है? और लंका कांड जो है वो इस कल्प वृक्ष का फल है। एक संत बोले, महाराज लंका कांड को आप फल बता रहे हैं जिसमें कितने राक्षस मारे गए, कितनी हत्याएं हो गईं, रावण की सेना ने कितने निरपराधों को मार दिया और भगवान राम के द्वारा कितने सैनिक लोग मारे गए, जिस लंका कांड में इतने लोगों की हत्याएं हुई, उसको आप कहते हैं कि वो फल है? तो संत ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बोले देखो माना कि इसमें मृत्यु बहुत हुई, मारे बहुत लोग गए, लेकिन जो भी प्रभु के हाथों से मारे गए उन सबको मोक्ष प्राप्त हुआ, और मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च फल यदि कोई है तो मुक्ति ही तो है। बोलो जय श्री राम। तो जो भी यहां राम के हाथों मारे गए वह भी मुक्त हुए, और ध्यान देना जो रावण की सेना के द्वारा मारे गए राम पक्ष के, वो सब जीवित हुए, और अंत में उन सब ने भी मोक्ष प्राप्त किया। तो सर्वोच्च फल तो मुक्ति ही माना गया है ना हमारे जीवन का। इसलिए लंका कांड इस कल्प वृक्ष का फल है, सबने उससे मुक्ति पाई। और उत्तरकांड, बोले उत्तरकांड इस कल्प वृक्ष के फल का अद्भुत रस है। बोलो जय श्री राम। एकदम रस ही रस भरा हुआ है, ज्ञान का रस भरा है, भक्ति का रस भरा है, कर्म का रस भरा है, उत्तरकांड में क्या नहीं है। बसुंडी बाबा ने श्री गरुड़ जी महाराज को लक्ष्य करके जो उपदेश किए हैं उत्तरकांड में, एक एक चौपाई स्वर्ण जटित है और हमारे जीवन को संवार सकती है। तत्व ज्ञान उसमें है। और एक बात बताऊं, वृद्ध अवस्था में ही इंसान के पूरे जीवन का निचोड़ आता है। रस, कोई कितना ही विशाल वृक्ष है, हैं? ठीक है 50 फुट का वृक्ष है, सैकड़ों उसमें डालियां हैं, अरबों उसमें पत्ते हैं, लाखों उसमें फूल हैं, हजारों उसमें फल हैं, लेकिन संपूर्ण वृक्ष का जो सार है वो सार तो फल के रस में ही होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए संपूर्ण रामचरित रूपी कल्प वृक्ष का जो सार है वो सार उत्तरकांड में है। इस संपूर्ण कल्प वृक्ष का रस उसमें भरा हुआ है। इसलिए यह कल्प वृक्ष है, ये कल्प तरु है संतनों। और यह कल्प वृक्ष के नीचे जो कोई भी आ जाता है उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं, वो प्रभु को पा लेता है, वो भगवान को समझ लेता है। वैसे मानस का मूल फल तो सज्जनों भक्ति है। रामचरितमानस का जो मूल फल बताया गया है वो है भक्ति, लेकिन और कुछ भी यदि चाहिए तो सब कुछ इसमें प्राप्त होता है। हाँ, शत्रु के विनाश के लिए भी रामचरितमानस में बड़े सुंदर सुंदर उपाय हैं। अनंत ऐश्वर्य की प्राप्ति हो तो हमें क्या करना चाहिए, वो रामचरितमानस में उपाय है, हैं? हमें कैसे समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हो, इसके लिए भी पूरे उपाय रामचरितमानस में बताए गए हैं। तो इसका उत्तम फल तो है भक्ति, पर और कुछ भी यदि चाहिए तो वो इसको प्राप्त हो सकता है। एक बात बताएं, इसका नाम रामायण नहीं है, ध्यान देना। बोलो जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसका नाम रामायण नहीं रखा, नाम रखा राम चरित्र मानस। ऊपर राम, बीच में चरित्र और नीचे मानस। तो हम शुरू नीचे से करें, मानस, चरित्र और राम, ध्यान देना। पहली बात है, राम को यदि पाना है तो अपने मानस को निर्मल बनाओ। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तो राम कैसे मिलेगा, मन तो भटक रहा है संसार में। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। ये मन ही राम से मिलाता है और मन ही फजीत खड़ी कर देता है कि मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लाल जी ये कहूं ठहरत ना, क्योंकि यह तो गति है अटपटी झटपट लखन को, जब मन की खटपट मिटही तो चटपट दर्शन हो। तो मानस चरित्र और राम, राम चरित्र मानस, पहले अपने मन को दृढ़ बनाओ, और मन हमारा जब दृढ़ होगा तो उसमें निर्मलता बढ़ने लगेगी। बोलो जय श्री राम। और मन जब हमारा दृढ़ होगा, निर्मल होगा, तो चरित्र को सत्यनिष्ठ बनाए, चरित्र में सत्य का आचरण करें, जितना बन सके चरित्र में सत्य आचरण लाए। कथा श्रवण करना भी हमारा सफल तभी है जब जीवन में सत्य को अपनाने की चेष्टा करें। 50 घड़ा रोज हम भगवान शिव को लुढ़काते हैं, लेकिन 1000 बार दिन में झूठ बोलते हैं। मुझे नहीं लगता उस शिव स्नान का कोई मतलब होता है। भगवान गिरिराज जी की हम नित्य परिक्रमा देते हैं, लेकिन सैकड़ों बार नित्य झूठ भी बोलते हैं। ठीक है, प्रदक्षिणा का फल हमें प्राप्त होगा, लेकिन सत्य हमारे जीवन का आभूषण बन जावे तो फिर तो 100% लाभ होगा ना। तो मन जब हमारा दृढ़ बनेगा, चरित्र में सत्य का आचरण होगा, तो फिर राम को पाना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। बोलो जय श्री राम। इसलिए मन को निर्मल बनाएं, सत्य का आचरण चरित्र में करें, तो राम हमें मिलेगा। तो राम चरित्र मानस, मानस चरित्र और राम, फिर राम। और वैसे देखा जाए तो राम दूर है ही कहां, राम तो पास में ही है, बिल्कुल निकट ही है। भगवान गोविंद श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। प्राणी मात्र के हृदय में, हृदये अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में छुपा हुआ है, लेकिन एक पर्दा पड़ गया है, कोई कपड़ा पड़ गया है, तो हृदय में रहने वाले को हम देख नहीं पाते। तू सो तू सोच ले मन में, राम है तेरे तन में, है सब जगह भगवान क्यों ढूंढता बन में। वो तो सर्वत्र वास करता है, ऊपर से एक पर्दा पड़ गया है, इसलिए वो हृदय में रहने पर भी दिखाई नहीं देता। किसी मंदिर का वार्षिकोत्सव था, तो वार्षिकोत्सव में कोई जुलूस निकल रहा था, जैसे आज भागवत रामायण जी की शोभा यात्रा आ रही थी ना, तो देखो कितनी माताएं बहने सब सज धज करके कलश लेके चल रही, पोथी यात्रा चल रही, रामायण जी को सिर पर भक्त लोग लेके चल रहे थे, कितने लोग नाचते गाते चल रहे थे, कैसा आनंद बरस रहा था। ऐसी किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति की सुंदर निकल रही थी शोभा यात्रा। अब कुछ बहनें स्नान कर रही थी, और जल्दी करो हमको यात्रा में सम्मिलित होना है, हमको भी पहुंचना है, सबके मन में चिंता थी। अब एक बहन जल्दी जल्दी बिचारी स्नान करके कपड़े उपड़े पहन करके आई, और जैसे ही वो यात्रा में आई तो आकर के देखी मेरा वो कहाँ गया, मेरा वो किधर गया, मेरा जो गले का हार था, चैन थी, वो कहाँ चली गई। अब बेचारी हल्ला मचाए, जोर से रो बे, मेरी चैन कोई ले गया, कहीं खो गई, मैंने कहाँ रख दी, क्या हुआ। इस दूसरी सखी ने कहा तुमने रखी तो कहीं नहीं थी, स्नान करके सीधे वस्त्र पहन कर आई, सुनो तुम थोड़ा देखो, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर ही होगी, कोई वस्त्र आ गया ऊपर से। और जब उसने वस्त्र हटा करके देखा तो चैन उसके अंदर ही तो थी। परमात्मा तो अंतर हृदय में विराजमान है, कोई सुंदर सा चित्र लगाए। आपने कहा हमारे परदादा के टाइम का महाराज ये चित्र है, अरे हमने कहा तो फायदा क्या हुआ, कुछ करो ना, दिखता तो कुछ है ही नहीं। अब आपने कहा महाराज बहुत महंगी फोटो है, बालू बालू जम गई है, अपन लोग दूसरी जगह रहते हैं, साल दो साल में कभी आते हैं तो मकान खुलता है। मैंने कहा जरा मोर पंख लेके आओ, और मोर पंख से धीरे धीरे मैंने झाड़ना शुरू किया, तो उसकी बालू मिट्टी जो लगी थी फोटो पर धीरे धीरे झड़ने लगी, और जो जो बालू मिट्टी झड़ती जाए त्यों त्यों अंदर से चित्र निखार होता जाए, निखरता जाए, प्रकट होता जाए। और जब पूरी बालू हट गई तो भगवान का सुंदर राम दरबार उसमें परिलक्षित हो रहा है। इसी प्रकार से हमारे अंतर हृदय में परमात्मा विद्यमान है, हमारे अंतर हृदय में प्रभु बैठे ही हैं, लेकिन ऊपर से अज्ञान का पर्दा पड़ गया है, अज्ञान की धूल पड़ गई है। और जब तक वो धूल हटेगी नहीं, अस प्रभु हृदय अछत अविनाशी, सबके हृदय में तो परमात्मा विराजमान ही है, लेकिन उसको देखने के लिए हमें मन की दृढ़ता और निर्मलता होना बहुत जरूरी है, मन की एकाग्रता। और एकमात्र और बताएं, जब तक जीवन में सत्य का आचरण नहीं होगा तब तक मन निर्मल नहीं हो सकता, एकाग्र तो हो सकता है। बोलो जय श्री राम। सत्य का आचरण हुए बगैर मन में निर्मलता नहीं आ सकती। मन एकाग्र तो नोट गिनने वाले का भी होता है। एक माता मेरे से बोली, ठाकुर जी थाने के बताऊं महाराज। मैंने कहा क्या हुआ? पर जब भी थारी कथा में बैठूं माने तो नींद बहुत आवे। मारवाड़ी मैया थी। सेठ जी बोले, मुझे भी यही रोग है महाराज, कथा में बैठते हैं मुझे नींद आती है। मैंने कहा एक बात पूछूं? बोले बोलो। मैंने कहा हजार हजार के नोटों की गड्डी जब गिनते हो तो कभी बीच में नींद आती क्या? बोलो जय श्री राम। बोले महाराज, गड्डी जब गिनता हूं तो आ भी रही होगी नींद तो भी भाग जाती है। तो एकाग्र मन तो लोभी का भी हो सकता है। काम ही नार प्यार जिमे लोभ ही प्रिय जिमे दाम। काम में आसक्त जो व्यक्ति होता है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, काम से आतुर व्यक्ति के मन में न भय होता है न लज्जा होती है, एकाग्रता बढ़ जाती है। तो मन की निर्मलता तो लोभ में भी होती है, मन की निर्मलता तो कामाशक्ति में भी होती है, मन की एकाग्रता तो कामाशक्ति और लोभ में भी हो सकती है। लेकिन जब तक सत्य का आचरण हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक मन निर्मल नहीं हो सकता। और जब तक मन में निर्मलता नहीं आएगी, ध्यान देना, तब तक राघवेंद्र की प्राप्ति तो नहीं हो सकती, ये बिल्कुल संभव है। भगवान को पाना है तो मन दृढ़ होने के साथ साथ निर्मल होना बहुत जरूरी है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मन असपव हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। तो हृदय में विराजमान परमात्मा को भी हम नहीं देख पाते क्योंकि मन की एकाग्रता और निर्मलता नहीं है, अज्ञान का पर्दा जो पड़ा है। अच्छा, कुछ लोगों का यह भी मानना है तो ऐसा, ये जो कल्प वृक्ष है इसके नीचे आ जाओ, सत्य का आचरण करें, मन की निर्मलता दृढ़ता को बढ़ाएं तो राम को हम पा सकते हैं। और रामायण रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाले के तो अंतस्थ में कोई कामना ही नहीं रह सकती है, और कामना रहेगी भी तो एक ही रहेगी, सुतीक्ष्ण की तरह। अस अभिमान जाहि जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा ये चलता फिरता कल्प वृक्ष है तुलसी बाबा का ये कलयुग में। अतः कुछ संत ऐसा भी कहते हैं कि रामायण को आप केवल ग्रंथ ना समझें। जैसे भागवत के बारे में कहा जाता है, श्रीमद् भागवत आख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। ऐसे हमारे मनीषी संत कहते हैं कि रामायण जी भी साक्षात राम का वांग्मय विग्रह है, रामायण साक्षात राम का स्वरूप है, और बालकांड जो है वो राम के चरण है। हमारे ब्रज में एक कहावत आती है, होनहार बिरवान के लखत चीकने पात। ब्रज में कहते हैं होनहार बच्चा के पलना में पाए दिख जामे कैसे होएंगे। तो बालकांड में इतनी दृढ़ता है, ये भगवान राघवेंद्र का चरण माना गया है। अयोध्या कांड उनके जंघा प्रदेश माने जाते हैं। जहां बड़ी दृढ़ता से सब निर्णय लिए जाते हैं, जिसमें बड़ा सुंदर जीवन जीने की कला बताई। अरण्य कांड जो है वो भगवान का कठिन प्रदेश है, जिसमें अद्भुत तपस्वी जीवन जिया गया, और किष्किंधा कांड तो भगवान का वक्षस्थल है, जहां सबको हृदय से लगाया गया, जहां सबको प्यार दिया गया। दुनिया ने जिसको दुत्कारा, उसको राम ने हृदय से लगाया। इसलिए किष्किंधा कांड को प्रभु का वक्षस्थल माना गया है, और जो सुंदर कांड है वो भगवान का कंठ है। सुंदर कांड साक्षात परमात्मा का कंठ है, जिसको बड़े सुंदर रागों में गाया जाता है। मैं सूरत में दिसंबर में सूरत में कर रहा था कथा, तो बीच में कथा में मंगलवार आया, भागवत कथा चल रही थी, तो बोले ठाकुर जी आप थोड़ी देर के लिए हमारे सुंदर कांड में पधारो ना। तो पांडाल में सुंदर कांड की व्यवस्था थी, मैं गया महाराज सुंदर कांड का। मैंने कहा भाई मैं 10 मिनट तक सुनूंगा, क्यों 10 बजे तक सोने की मेरी आदत है रात्रि को। महाराज मैं 2 घंटे सुंदर कांड में बैठा, जो आनंद मुझे आया। हर 4-5 चौपाई के बाद एक सुंदर राग बदल दें, और सब माताएं बहनें भाई लोग इतने भाव से सुंदर कांड का पाठ कर रहे थे। तो सुंदर कांड मेरे परमात्मा का कंठ है, इसको अनेक राग रागनियों में गाया जाता है, मधुर कंठ से इसको गाया जाता है। और लंका कांड जो है वो परमात्मा का मुख है, ये सबका भक्षण करता है, सब कुछ तो भगवान के पेट। देखो एक आध्यात्मिक रीति में यदि देखें, शास्त्रीय दृष्टि में देखें, तो सब तो भगवान के पेट में ही है। एक बार गए थे भीमसेन श्री कृष्ण से मिलने, अच्छा पहले प्यार से बोलो जय श्री राम। साल भर में 34 करता हूं मैं भागवत कथा, तो जय श्री कृष्ण चलता है, और 2 करता हूं सिर्फ राम कथा, तो जय श्री राम पता नहीं कैसे हो जाता है, बोलो जय श्री राम देख लो। हाँ, तो भीमसेन जब श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिकापुरी में गए, द्वार पर दरबान खड़े थे, आओ। बोले क्या नहीं आए हैं, जाके बोल दो भीम दादा आए हैं। दोनों दरबान बोले जी आप विराजिए, हम अभी सूचना लेके जाते हैं। और जैसे ही दरबान सूचना लेकर के परमात्मा कृष्ण के पास में गए, भीमसेन में इतना धैर्य कहां, भीमसेन भी उनके पीछे पीछे चल दिए। मेरे कन्हैया तो भोग लगा रहे थे, प्रभु ने देखा दोनों दरबान आए हैं, उनके पीछे भीमसेन जी भी खड़े हैं। दरबान बोले महाराज हस्तिनापुर से भीम दादा आए हैं आपका दर्शन करने के लिए, क्या कह दूं। कन्हैया तो देख लिया था कि भीमसेन खड़े पीछे। कृष्ण बोले सुनो भीम दादा से बोल देना अभी हम 1 घंटे उनसे नहीं मिल सकते, वो द्वार पर ही खड़े रहे। दरबान बोले कारण क्या बताएं। अरे कारण उनको बताना नहीं, हाँ क्योंकि भीमसेन जो हैं बड़े पेटू हैं, अभी हम भोजन कर रहे हैं भाई जी, और भोजन करते इसमें भीम हमको देख लेंगे तो हमको नजर लग जाएगी ना, वो तो बड़े पेटू हैं। ये बात सुनते ही भीमसेन ने दरबान में दिया धक्का और कृष्ण के सामने आके खड़े हो गए। क्या कहा हमसे, हम पेटू हैं। कन्हैया बोले आप यहीं खड़े थे क्या, मैंने सोचा दरवाजे पे ही होंगे। तो भीमसेन बोले तुमसे बड़ा पेटू कौन हो सकता है। कि यस्य ब्रह्मत छत्रंच उभे भवतु ओदनम, शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य काल रूप से परमात्मा इन सबको दाल भात बना करके खा जाते हैं। उभे भवतु ओदनम, और सारी दुनिया को नष्ट करने वाली, दुनिया का विनाश करने वाली जो मौत है, बोले मृत्युर यस्योपसेचनम, उस मृत्यु को चटनी बना करके परमात्मा चाट जाता है। सब कुछ तो उसके पेट में ही है। एक समष्टि दृष्टि से यदि हम देखने का प्रयास करें तो ये हम जहां बैठे हैं वो भी उनके पेट में है, हम भी उनके पेट में है, सारी दुनिया भी उनके पेट में ही है। तो लंका कांड जो है वो परमात्मा का मुख है, सबका भक्षण करता है, है? और उत्तर कांड जो है ना जी, ये रामायण रूपी परमात्मा राम का मस्तिष्क है, समस्त ब्रह्म विद्या मस्तिष्क में भरी हुई है। तत्व ज्ञान, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म, संसार में रहकर भी हम संसार से अलग कैसे रहें, दुनिया में रहकर भी हम दुनिया से दूर कैसे रह सकते हैं। सरोवर ने कभी कहा नहीं कि कमल हमारा नहीं है, लेकिन गौर से देखो तो कमल सरोवर का है ही नहीं। 24 घंटे सरोवर में रहने के बावजूद, 24 घंटे पानी में रहने के बावजूद, एक बूंद भी पानी की कभी कमल के ऊपर टिक नहीं पाती है। तो संसार में रहकर भी हम संसार से दूर कैसे रहें? एकांत में बैठो। आज का मनुष्य बड़ा खोखला होता जा रहा, ध्यान देना। ऊपर से बढ़िया बढ़िया साबुन से नहाकर हम चेहरे को चमकाते हैं, फिर क्रीम पाउडर लगाकर के उसमें लाइट आ जाती है, लेकिन अंदर से हम खोखले होते चले जा रहे हैं। क्योंकि जो आत्मबल है, आध्यात्मिक बल है, उस बल से शून्य हमारा हृदय होता जा रहा है। और आध्यात्मिक जो बल है सज्जनों, वो केवल आत्मचिंतन के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। और आत्मचिंतन क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये ब्रह्म विद्या क्या है, इसका सही दर्शन हमको मानस के उत्तरकांड में देखने को मिलता है। क्योंकि वो परमात्मा का मस्तिष्क है, भगवान का मस्तिष्क है, इसलिए इसको ग्रंथ न समझें, इसको परमात्मा का रूप ही माने, भगवान का स्वरूप समझ करके पूजें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की जो रचना की है उसमें तीन हेतु बताए हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। के स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। तो तुलसीदास जी का पहला सूत्र है स्वांत सुखाय, अपने मन को बोध हो, अंतकरण के सुख को पाने के लिए। विचित्र बात, रामायण लिखी थी स्वांत सुख के लिए, लेकिन विश्व के कल्याण का प्रतीक बन गई है रामायण। आज विश्व के 140 देशों में रामायण के सम्मेलन होते हैं, ध्यान देना। बोलो जय श्री राम। गत वर्ष कनाडा के ब्रोमटन शहर में 9 दिन तक राम कथा लोगों ने मुझसे सुनी, तुलसीकृत रामायण, भागवत तो वे सुनते ही रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, महाराज हर साल हम लोग रामायण सम्मेलन करते हैं, भारत से और एशिया से समस्त विद्वानों को यहां आमंत्रित करते हैं। तो जो स्वांत सुख के लिए लिखी गई वो विश्व के कल्याण का प्रतीक बन गई रामायण। और दूसरा उनका सूत्र है मेरे मन को बोध हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कभी संसार को नहीं समझाया, ध्यान देना। उन्होंने जब भी कहा अपने मन से ही कहा, जब भी उन्होंने कहा अपने मन को ही समझाने का प्रयास किया। तात्पर्य बड़ा सुंदर है, हम भी अपने आप को वहां स्थापित करके अपने मन को ही समझाने का प्रयास करें। और तीसरा उनका कारण है निज गिरा पावन करण कारण, अपनी वाणी को पावन बनाने के लिए उन्होंने रामायण जी की रचना करी। तो स्वांत सुख के लिए, मेरे मन को बोध प्रकट हो इसके लिए, और अपनी वाणी को पावन बनाने के लिए, इन तीन सूत्रों को लेकर के हम लोग भी यहाँ 9 दिनों तक श्री रामायण जी का इस पवित्र अनुष्ठान करेंगे। अंतकरण का चैन मिले, मन को बोध हो और प्रभु चरणों में प्रीति हो, देखा जाए तो जीवन का लक्ष्य यही बनना चाहिए। और हर व्यक्ति के अंतर मन में बोध की आकांक्षा जगे तो पूरा संसार बोध गम्य हो जाए। इसलिए बड़े भाव बड़ी श्रद्धा से आइए रामायण जी का पावन शुभारंभ करते हैं। एक सज्जन मेरे से परसों कह रहे थे, बोलो ठाकुर जी आप तो भागवत के अनेकों आयोजन कर सके, संस्कृत के निष्ठावान विद्वान हैं, रामायण के प्रति रुझान कैसे हुआ, राम कथा के प्रति आकर्षण कैसे हुआ? मैंने कहा भैया ये मुरली वाला तो सखा है ही है, पर दासत्व को भाव जब भी आता है तब अंतर हृदय में धनुषधारी दिखाई देने लग जाता है। बोलो जय श्री राम। दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा।
दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा।
दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा।
दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा।
दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा।
दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा।
सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा।
सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा।
सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा।
सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का,
श्री हरि
रहा कुछ उधर मेरा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर मेरा। दास रघुनाथ का
श्री हरि दर्शन, ब्रज का वास दोनों मिल रहे हैं।
मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया।
मैथिली
सत्कार में मग्न हो कर सदा,
कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा।
मात्र सत्कार में मग्न हो कर सदा,
कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा।
दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा।
दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का
श्री हरि जय। कवि किशोरी सीता जी के हाथों से मोदक प्राप्त हुआ, कभी लाडली जी के चरणों में सिर रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता का सत्कार दुलार प्यार मिला, कुछ इधर भी कुछ उधर भी बोलो जय श्री राम। अंतर है क्या?
है प्रसादी अवधराज की, खूब जो
बली है प्रसादी अवध राज की, खूब झूठन मिली यार ब्रज राज की,
खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब झूठन मिली यार ब्रज राज की,
भोग मोहन चका दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी,
कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा,
दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा,
दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा,
उस तरफ हार दरवा इस तरफ दोस्त हूँ दान सरताज का,
उस तरफ द्वार दरवान हूँ का, इस तरफ दोस्त हूँ दान सरताज का,
उस तरफ द्वार दरवान हूँ राज का, इस तरफ दोस्त हूँ दान सरताज का,
उस तरफ रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा,
वहां दरवान हूं यहां दोस्त हूं, वहां दास हूं यहां सखा हूं, अंतर तो दोनों में है नहीं, एक ही तत्व है, कुछ लोग न इधर रहते हैं कुछ लोग न उधर रहते हैं, हम दोनों तरफ रहते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण,
जय श्री।
बड़ी सुंदर पंक्ति है बिंदु जी महाराज का पद है, हमारे राष्ट्र के महान संत बिंदु जी, कोई नर या उधर वा उधर ही रहा, कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा,
कोई नर इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा,
दास रघुनाथ का
नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा,
दास रघुनाथ का
नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा,
दास रघुनाथ का
नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा,
कुछ इधर।
इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा।
रामायण जी के महात्म्य का थोड़ा सा वर्णन यहाँ किया गया। अब यहाँ से श्री रामचरितमानस का मंगल में शुभारंभ करते हैं। मंगल में प्रारंभ किया। एक बड़ी विचित्र बात आपसे बताएं, जब गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस का निर्माण किया, रचना की, तो लोगों के मन में यह भाव था इतनी सुंदर रामायण लिखने जा रहे हैं बाबा जी, तो इसका शुभारंभ राम शब्द से करेंगे। रामायण में सबसे पहले गोस्वामी जी राम शब्द लिखेंगे। राम के इतने लाडले भक्त, लेकिन गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का आरंभ किया वर्ण शब्द से कि वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वर्ण शब्द से प्रारंभ किया, तो वर्ण ही शब्द से प्रारंभ क्यों किया, इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या है। अच्छा, रामायण जी का आरंभ होता है वर्ण से, और रामायण का सबसे अंतिम जो शब्द है वो है मानव। ते संसार पतंत घोर किरणई दहियंतिनो मानवाः। तो रामायण जी का आरंभ है वर्ण से और इसका समापन है मानव से, मानवाः से। तो वर्ण शब्द से ही क्यों किया? कहते हैं इसके कई कारण हैं। गोस्वामी जी ये बताने का प्रयास करते हैं कि रामायण जो है वो किसी व्यक्ति विशेष की पूंजी नहीं है। आगे भविष्य में कहीं ब्राह्मण लोग ये न कहने लग जाएं कि रामायण के केवल हम ही अधिकारी होंगे, हम लोग वेद पढ़ते हैं, हम लोग संस्कृतज्ञ होते हैं, हम लोग शुद्ध रहते हैं, उच्च कुल में हमने जन्म लिया है, या फिर आगे चलकर क्षत्रिय कुल राजा कहीं ये न कहने लग जाएं कि राम जी हमारे वंश में अवतरित हुए थे, राम जी हमारे पूर्वज कहलाए, क्षत्रिय वेद थे, क्षत्रिय हम हैं, या फिर महात्मा लोग कदाचित ये न कहने लग जाएं कि देखो राम का अवतार तो संतों के लिए हुआ, विप्रधेन सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, इसलिए रामायण केवल हमारा ही अधिकार रहेगा। आगे चल के ऐसी कोई तकरार न आने लग जाए, इसलिए गोस्वामी जी ने शुरुआत ही वर्ण से करी और समापन मानव से किया। मतलब ये प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक मानव मात्र के लिए है। बोलो जय श्री राम। ये किसी वर्ण विशेष के लिए नहीं है, ये समस्त मनुष्यों के लिए है। भगवान राम का प्राकट्य तो, और यदि हम देखें तो राम का अवतार केवल रावण को मारने के लिए नहीं हुआ, भगवान राम का अवतार तो मानव मात्र के कल्याण के लिए हुआ। मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे हो? प्रत्येक मानव मेरा अपना है। ते संसार पतंत्य घोर किरण ही दहियंति नो मानवा। इसलिए उन्होंने प्रथम शब्द मानव से, वर्ण से किया। एक और बात, रामायण जी का जब आरंभ होता है तो पहले 7 मंत्र गोस्वामी जी ने लिखे हैं, कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान थे, क्योंकि बिना संस्कृत का प्रकांड विद्वान हुए बगैर कोई इतनी सुंदर रामायण तो नहीं लिख सकता। बोलो जय श्री राम। तो 7 मंत्रों में पहले उन्होंने व्याख्या की है, तो 7 ही मंत्र गोस्वामी जी महाराज ने क्यों लिखे, इसका बड़ा सुंदर कारण है। पहला कारण तो संतजन ये बताते हैं कि प्रत्येक जो मंत्र है वो एक एक कांड का मानव प्रतिनिधित्व करता है। रामायण में 7 कांड है ना, इसलिए प्रथम जो 7 मंत्र हैं वो एक एक कांड का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्होंने 7 मंत्र लिखे। या तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि संगीत में 7 स्वर होते हैं, संगीत के अंदर होते हैं 7 स्वर, सारे गामा पाधानी, और रामायण एकमात्र ऐसा दिव्य ग्रंथ है विश्व में जिसको किसी भी स्वर में और किसी भी राग में कभी भी गाया जा सकता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने पहले 7 मंत्रों का प्रणयन किया। या तो 7 मंत्रों का प्रणयन इसलिए उन्होंने किया कि भगवान श्री राम का जो अवतार है वो 7वां अवतार है। बोलो जय श्री राम। हाँ, अपने अपने इष्ट के प्रति निष्ठा प्रदर्शन के लिए। वैसे 24 अवतारों की परंपरा में यदि हम देखें तो राम जी जो हैं वो 18वें अवतार होते हैं, लेकिन 10 अवतारों की स्थिति में हम देखें तो राम जी 7वें अवतार होते हैं। इसलिए उन्होंने पहले 7 मंत्र लिखे। या तो गोस्वामी जी ने 7 मंत्र इसलिए लिखे कि सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं तो रामायण के आरंभ करने का ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसी दिन इसका आरंभ किया जाए। गोस्वामी जी ने कह दिया, भैया जिस दिन तुमको सुंदर अवसर मिले उसी दिन प्रारंभ कर दो। सुदिन सुमंगल जब ही जब राम होय युवराज। तो इसका ऐसा कोई नियम नहीं है। 7 दिन में जो दिन अपन को अच्छा लगे उस 7वें दिन के किसी 7वें दिन में कभी भी प्रारंभ किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने 7 मंत्र लिखे। या तो 7 मंत्र लिखने का ये कारण रहा होगा, गोस्वामी जी ने सोचा होगा कि आगामी भविष्य में ये राम कथा 7 समुद्रों पर अपना साम्राज्य स्थापित करेगी, बल्कि 7 समुद्र पार विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार होगा और विदेश में भी राम भक्त उत्पन्न होंगे, इसलिए उन्होंने 7 मंत्र लिखे हैं। जो भी कुछ कहा हो, लेकिन 7 मंत्रों से प्रारंभ वर्ण से, वर्णानाम अर्थसंभानाम। सबसे पहले गणपति महाराज और सरस्वती जी की वंदना की। जो जितने वर्ण हैं, जितने अर्थों के समूह हैं, उनका प्रणयन करने वाली उनकी अधिष्ठात्री, शब्द की वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती और विघ्नों के विनाशक, सब प्रकार के सुख समृद्धि को देने वाले भगवान गणपति के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। देवी सरस्वती को मैं वंदन करता हूं कि भवानी संकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांतस्तमेश्वरम। मैं देवी भवानी और शंकर दोनों को प्रणाम करता हूं। माता और पिता के रूप में भी पहले माता की वंदना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, गुरु जी का नंबर तो 3रे में आता है। हाँ, सर्वप्रथम वंदना तो मां की जाती है, तो माता और पिता के रूप में यदि देखें तो भी पहले भवानी की वंदना, फिर भगवान शंकर पिता की वंदना, और श्रद्धा विश्वास के रूप में देखें तो पहले श्रद्धा की वंदना बाद में विश्वास की वंदना। बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं हो सकता और बिना विश्वास के श्रद्धा दृढ़ीभूत नहीं हो सकती। बोलो जय श्री राम। भगवान शंकर साक्षात विश्वास का प्रतीक हैं। परम्बा श्री पार्वती जी श्रद्धा का स्वरूप हैं। श्रद्धा तो जीवन में होनी नितांत जरूरी है, बिना श्रद्धा के गोविंद मिलेगा कैसे। याभ्याम विना न पश्यंती सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के अपने स्वांतस्थ में विराजमान ईश्वर को बड़े बड़े सिद्ध लोग भी नहीं समझ पाते। ईश्वर हृदय में बैठा है पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उसको देख नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते। विश्वास चाहिए। एक आदमी शंकर जी की पूजा करने के लिए गया, ध्यान देना, और भगवान शंकर की पूजा करने गया तो देखा शिव जी के ऊपर चूहा बैठा है, और जो भक्त लोग चनोरी चढ़ा गए थे वो चूहा खा रहा है। बस उसने जैसे ही देखा कि राम 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 राम, जो अपने सिर पर बैठे चूहे को नहीं हटा सकता वो मेरी रक्षा क्या करेगा। इधर फेंका लोटा, इधर फेंका बेलपत्र, आगे फेंकी चनोरी, कोई भगवान भगवान नहीं है, और सब छोड़ करके भाज गए। एक तो वो व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति आया, भगवान शिव के दरबार में जैसे प्रवेश किया देखा तो चूहा बैठा चनोरी खा रहा है शिव जी के माथे पर बैठ के। तो उस भगत ने क्या किया मालूम है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। भोला बाबा सबको माथे पर ही बिठा लेता है। सो उसने चूहा हटा दिया, बिल्लू पत्र भी हटा दिया, प्रेम से रोज की भांति भगवान शिव को स्नान कराया और आरती पूजा करके चला गया, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब तीसरा जो आया, तीसरे व्यक्ति ने जैसे ही शिव मंदिर में प्रवेश किया और भगवान शंकर के सिर पर बैठे चूहे को देखा, उसके नेत्रों से तो आंसू झर पड़े। विश्वास पक्का है, श्रद्धा ऊंची है, आपका नाम शिव है, आप आशुतोष हैं, आशु शीघ्रम तुष्यति थी आशुतोष, पर आप आशुतोष हैं ये तो मैं आज प्रत्यक्ष देख रहा हूं। चूहे को भी गले से लगाते हो, चींटियों को भी हृदय से लगाते हो, क्यों न लगाओ, आपके ही तो हैं सब, और इनमें भी तो आप विद्यमान हैं, इन सब रूपों में तो आप ही विद्यमान हैं। बस महाराज वो तो जल चढ़ाना भूल गया और घंटों तक शिव के सिर पर बैठे चूहे को देख देख नेत्रों से करुणा बरस पड़ी। इतने करुणा के सागर, शम कल्याणम करोति शंकर, आंसु शीघ्रम तुष्यति थी आशुतोष, आज उसको प्रत्यक्ष में देखना हूं तो श्रद्धा विश्वास रूपेण, जिसके मन में श्रद्धा है, जिसके मन में विश्वास है, उसको माइक्रोफोन में भी भगवान दिखाई देगा। जिसके मन में श्रद्धा और विश्वास है, उसको वृक्ष की डाली में गोविंद दिखाई देगा। जिसके मन में श्रद्धा और विश्वास है, उसको कुत्ते में, गधे में, चूहे में परमात्मा दिखाई देगा। और जिसके मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं है, उसको हृदय में बैठा परमात्मा भी कभी दिखाई नहीं देगा। बोलो जय श्री राम। तो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। बिना उनकी कृपा के, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। हम गिरिराज जी परिक्रमा देने जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन श्रद्धा है, विश्वास है कि मेरे गोविंद का रूप है, मेरे परमात्मा का रूप है, इसलिए थकान महसूस नहीं करते। और कुछ लोग जिनमें श्रद्धा नहीं, आ गए थे महाराज 10 दिन, हम तो पलंग पे ही पड़े रहे, खाए वो क्या, खामा खा गए, तो उनके लिए कुछ नहीं है, खामा ही खाए। तो विश्वास जहां है, श्रद्धा जहां है, वहीं परमात्मा निवास करते हैं। तो श्रद्धा और विश्वास के प्रति भगवान भवानी शंकर के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं। और एक बड़ी सुंदर बात कही कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि व्यक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम, जो साक्षात ज्ञान स्वरूप है, गुरु शंकर रूपिणम, भगवान शंकर का ही जो स्वरूप है, ऐसे अपने सद्गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं। यमाश्रितो ही वक्रोपी, भगवान शंकर, क्योंकि रामायण जी में लिखा है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन के गुरु साक्षात भगवान शिव हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना,